नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर माले में मालदीव के 60वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। प्रधानमंत्री आज शाम तमिलनाडु के तूतीकोरिन में 4,800 करोड़ रुपए से अधिक के विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। वर्ष 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान भारतीय सैनिकों की वीरता के सम्मान में आज देश भर में कारगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है। बिहार सरकार ने राज्य में पत्रकारों की मासिक पेंशन 6,000 रुपए से बढ़ाकर 15,000 रुपए कर दी है। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच लड़ाई तीसरे दिन भी जारी, मृतकों की संख्या 33 हुई। और कोनेरू हम्पी आज जॉर्जिया के बचूमी में फिडे महिला विश्व कप शतरंज के फाइनल में अपने ही देश के दिव्या देशमुख से खेलेंगी। दोपहर समाचार के साथ मैं लवली निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मालदीव के 60वें स्वतंत्रता दिवस पर मुख्य अतिथि होंगे। श्री मोदी राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू के विशेष आमंत्रण पर मालदीव की राजकीय यात्रा पर हैं। प्रधानमंत्री ने मालदीव के लोगों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी हैं।
मालदीव के 60वें स्वतंत्रता दिवस पर गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में आना मेरे लिए सम्मान की बात है। मैं इस निमंत्रण के लिए राष्ट्रपति जी का आभार व्यक्त करता हूँ और सभी भारतवासियों की ओर से मालदीव के लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। इस वर्ष भारत मालदीव संबंधों की भी 60वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है।
विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने मालदीव की सरकार और जनता को उनकी स्वतंत्रता की हीरक जयंती पर बधाई दी है। विदेश मंत्री ने हिंद महासागर क्षेत्र में शांति, समृद्धि और स्थिरता के लिए साझेदार और मजबूत करने की भारत की प्रतिबद्धता दोहराई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मालदीव के उपराष्ट्रपति हुसैन मोहम्मद लतीफ के साथ बैठक की। दोनों नेताओं ने भारत मालदीव मैत्री पर चर्चा की, जिसमें बुनियादी ढांचा, प्रौद्योगिकी, जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा जैसे क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने पीपल्स मजलिस मालदीव संसद के अध्यक्ष अब्दुल रहीम अब्दुल्ला के साथ भारत मालदीव के घनिष्ठ संबंधों पर भी चर्चा की। श्री मोदी ने मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद से भी मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने आश्वासन दिया कि भारत क्षमता निर्माण और विकास के लिए सहयोग से मालदीव को सहायता देना जारी रखेगा।
रक्षा मंत्रालय की बिल्डिंग हमारी मजबूत साझेदारी का प्रतीक है। साझेदारी अब वेदर साइंस में भी होगी। मौसम चाहे जैसा हो, आवर फ्रेंडशिप विल ऑलवेज रिमेन ब्राइट एंड क्लियर। मालदीव की रक्षा क्षमताओं के विकास में भारत निरंतर सहयोग देता रहेगा। हिंद महासागर क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि हमारा साझा लक्ष्य है।
इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में कल भारत और मालदीव के बीच 6 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। इनमें मत्स्य पालन और जल कृषि, मौसम विज्ञान, डिजिटल ढांचा, यूपीआई, भारतीय औषध कोष और ऋण सुविधा शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने मालदीव में बुनियादी ढांचा विकास और अन्य विकास कार्यों के लिए 4,850 करोड़ रुपये की नई ऋण सुविधा की घोषणा की है।
हमारी डेवलपमेंट पार्टनरशिप को नई उड़ान देने के लिए हमने मालदीव के लिए 565 मिलियन डॉलर यानी लगभग 5,000 करोड़ रुपए की लाइन ऑफ क्रेडिट देने का निर्णय लिया है। यह मालदीव के लोगों की प्राथमिकताओं के अनुरूप यहां के इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास से जुड़ी परियोजनाओं के लिए इस्तेमाल ली जाएगी।
मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत का दूसरा सबसे लंबे कार्यकाल वाला प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी। श्री मोइजू ने कहा कि भारत लंबे समय से मालदीव का निकटतम और सबसे भरोसेमंद मित्र देश रहा है और दोनों देशों के बीच सुरक्षा, व्यापार, स्वास्थ्य तथा शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक सहयोग है।
This LOC will be utilized for priority projects of my government across key sectors including defense, sports, healthcare, education and housing. I'm also pleased to announce the initiation of negotiations for a free trade agreement between India and the Maldives. This landmark initiative marks a significant step forward in strengthening our economic partnership.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमिलनाडु के दो दिन के दौरे पर आज शाम तूतीकोरिन पहुंचेंगे। श्री मोदी तूतीकोरिन हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री 4,800 करोड़ रुपए लागत की विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी करेंगे।
सरकार देश भर में हवाई संपर्क बढ़ाने के लिए उड़ान योजना पर ध्यान केंद्रित कर रही है। ये हवाई अड्डा इसरो के दूसरे अंतरिक्ष केंद्र कुलशेखर पट्टिनम, प्रसिद्ध तिरुचेंदूर मंदिर और आसपास के जिलों को जोड़ेगा। इससे व्यापार और निवेश को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। यहाँ से होने वाले प्रमुख निर्यातों में निर्माण सामग्री, चीनी, ग्रेनाइट और लिमोनाइट अयस्क शामिल है। ये शहर राज्य के 70% नमक का उत्पादन करता है। प्रधानमंत्री मोदी सम्राट राजेंद्र चोल प्रथम के जयंती समारोह में भी शामिल होंगे। तूतीकोरिन से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शशांक कुमार।
थूथुकुड़ी के औद्योगिक क्षेत्र में हवाई अड्डा टर्मिनल के नए भवन के उद्घाटन के लंबे समय से प्रतीक्षा थी। भारतीय वाणिज्य परिसंघ के सचिव पोन वेंकटेश ने कहा कि इससे थूथुकुड़ी से निर्यात को बढ़ावा मिलेगा।
The facilities, the potential that Thoothukudi has is phenomenal. The land availability, the fantastic all-weather port and everything is there. And the human resource, particularly the colleges available, the students over here, they're all pulled towards Chennai or Bangalore or Hyderabad for their employment. So when a lot of industries are coming to Thoothukudi,
वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने भारत और ब्रिटेन के बीच हाल में हुए मुक्त व्यापार समझौते FTA को क्रांतिकारी बदलाव बताया है। नई दिल्ली में श्री गोयल ने कहा कि यह समझौता कई क्षेत्रों में व्यापक अवसर खोलता है और साथ ही मूल हितों की रक्षा भी करता है। उन्होंने इसे भारत का अब तक का सबसे बड़ा और व्यापक व्यापार समझौता बताया।
एक गेम चेंजिंग फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो अपार अवसर लेके भारत के किसानों के लिए, भारत के उद्यमियों के लिए, MSME सेक्टर के लिए, कामगारों के लिए, युवा युवतियों के लिए, मछुआरों के लिए, हर वर्ग के लिए अलग अलग लाभ, बड़ा लाभ देने का काम करेगा। अभी तक जितने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुए उसमें सबसे बड़ा, महत्वपूर्ण और कॉम्प्रिहेंसिव फ्री ट्रेड एग्रीमेंट UK और इंडिया का रहा है।
ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। देश आज करगिल विजय दिवस मना रहा है। ये दिवस 1999 में पाकिस्तान के खिलाफ हुए करगिल युद्ध में शहीद हुए वीर जवानों की स्मृति में मनाया जाता है। एक रिपोर्ट।
करगिल विजय दिवस पर पूरा देश उन बहादुर वीरों को याद कर रहा है जिन्होंने 1999 की भारत पाकिस्तान युद्ध में अपनी जान की कुर्बानी दी। ये दिन ऑपरेशन विजय की सफलता का प्रतीक है जिसमें भारतीय सेना ने करगिल के उन इलाकों को दोबारा अपने नियंत्रण में लिया जहां पाकिस्तानी सैनिकों और आतंकवादियों ने घुसपैठ की थी। करीब 60 दिनों तक चला यह युद्ध आज के दिन खत्म हुआ था। हिमालय की ऊंची पहाड़ियां भी भारतीय सैनिकों के साहस के आगे छोटी पड़ गई जब उन्होंने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया और वहां तिरंगा फहराया। इस युद्ध में कैप्टन विक्रम, कैप्टन मनोज कुमार पांडे, लेफ्टिनेंट केशिंग क्लिफर्ड नोंगरूम और ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव जैसे जवाजों ने युद्ध में भारत की जीत का परचम लहराया। इस युद्ध में कठिन भौगोलिक हालात भारतीय सेना के मजबूत इरादों को डिगा नहीं सके और प्रत्येक जवान ने अपनी अद्भुत वीरता का परिचय दिया। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। राष्ट्रपति ने कहा कि राष्ट्र के लिए उनका समर्पण और सर्वोच्च बलिदान नागरिकों को सदैव प्रेरित करता रहेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज का दिन उन वीर सपूतों के अदम्य साहस और पराक्रम की याद दिलाता है जिन्होंने राष्ट्रीय गौरव की रक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने करगिल दिवस पर आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय समर स्मारक पर जाकर उन बहादुर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की जिन्होंने 1999 में करगिल युद्ध में प्राणों की आहुति दी थी। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान, थल सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी, वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल AP सिंह और नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी तथा रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने भी वीर सैनिकों को नमन किया है। लद्दाख में करगिल विजय दिवस के अवसर पर आज सुबह द्रास में करगिल युद्ध के शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए विशाल पदयात्रा निकाली गई। पदयात्रा का नेतृत्व केंद्रीय युवा कार्य और खेल तथा श्रम और रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया के साथ रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने किया। श्री मांडविया ने कहा कि देश के वीरों का साहस, धैर्य और बलिदान राष्ट्र को प्रेरित करता रहता है।
आज हमारे देश के माय भारत प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर 1,80,00,000 से अधिक देश के युवाओं के प्रतीक रूप 3,000 हमारे देश के युवा वॉलंटियर्स जो लेह, कारगिल, द्रास और कश्मीर से आए, उन्होंने इस पदयात्रा के द्वारा हमारे देश के वीर जवान जो देश के तिरंगा झंडा की आन बान और शान के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है, उसकी याद में हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करी है। मैं सभी माय भारत वॉलंटियर के द्वारा सभी देश के वीर जवानों को नमन करता हूं, वंदन करता हूं।
वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने भी देश के सभी वीर सैनिकों के पराक्रम को स्मरण किया। उन्होंने कहा कि ये दिन लोगों को याद दिलाता है कि भारत की धरती का एक एक इंच कितना महत्व रखता है। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने 26वें करगिल विजय दिवस पर द्रास में करगिल युद्ध स्मारक पर शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सशस्त्र बलों ने करगिल जैसा ही साहस दिखाते हुए पाकिस्तान के आतंकवादी ढांचे को नष्ट किया और निर्णायक विजय प्राप्त की।
यह वह शर्त था जब भारत ने स्पष्ट कर दिया कि उसकी सीमाओं के भीतर किसी भी नापाक इरादे को सफलता नहीं मिलेगी। भारत की एकता और अखंडता पर कोई आंच नहीं आने दी जाएगी। इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी भारतीय सेना ने उसी अदम्य साहस और दृढ़ संकल्प के साथ पाकिस्तान समर्थित टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया और पाकिस्तान की अन्य आक्रामक कार्रवाइयों को प्रभावशाली ढंग से विफल करते हुए एक निर्णायक जीत हासिल की।
पुडुचेरी में करगिल विजय दिवस पर करगिल युद्ध में सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर सैनिकों को भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। बिहार में अब पत्रकारों का 15,000 रूपये की मासिक पेंशन मिलेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज सोशल मीडिया पर इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि बिहार पत्रकार सम्मान पेंशन योजना के अंतर्गत सभी पात्र पत्रकारों को अब 6,000 रूपये के स्थान पर 15,000 रूपये प्रतिमाह पेंशन मिलेगी। केंद्र सरकार ने अटल पेंशन योजना के अंशधारकों की संख्या 8 करोड़ को पार कर गई है। यह योजना देश के सभी नागरिकों के लिए एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है जो मुख्य रूप से गरीबों, वंचितों तथा असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों पर केंद्रित है। सरकार ने देश भर में आयुष्मान आरोग्य मंदिरों और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत 10 करोड़ 18 लाख से अधिक महिलाओं की सर्विकल कैंसर की जांच की है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि उपलब्धि गैर संचारी रोगों की जांच, रोकथाम और प्रबंधन की जनसंख्या आधारित पहल का हिस्सा है। जम्मू कश्मीर में पहलगाम आतंकवादी हमले और ऑपरेशन सिंदूर के अंतर्गत भारत की कार्यवाही पर सोमवार को लोकसभा में विशेष चर्चा होगी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कल नई दिल्ली में संवाददाताओं से कहा कि यह निर्णय लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला की अध्यक्षता में हुई कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में लिया गया है। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच जारी सीमा संघर्ष में मृतकों की संख्या 33 हो गई है। कंबोडिया में 13 लोगों के और थाईलैंड में 20 लोगों के मरने की खबर है। इस बीच कंबोडिया स्थित भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों को कंबोडिया और थाईलैंड के सीमावर्ती क्षेत्रों की यात्रा न करने की सलाह दी है। जॉर्जिया में फिडे महिला विश्व कप के फाइनल में आज भारत की कोनेरो हम्पी का सामना अपने ही देश की दिव्या देशमुख से होगा। इस मुकाबले में जीत दर्ज करने वाले खिलाड़ी खिताब के लिए चीन के यू वेंजुन से खेलेगी। उधर मिस्र में भारत की स्क्वाश खिलाड़ी अनाहत सिंह ने विश्व जूनियर चैंपियनशिप के महिला सिंगल्स का कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। खेल मंत्रालय और राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा ने विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी वाडा की खुफिया जांच कार्यशाला के दूसरे संस्करण की मेजबानी की। ये कार्यशाला 21 से 25 जुलाई तक नई दिल्ली में आयोजित की गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज माले में मालदीव के 60वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। प्रधानमंत्री आज शाम तमिलनाडु के तोतीकोरिन में 4,800 करोड़ रुपए से अधिक के विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। वर्ष 1999 के करगिल युद्ध के दौरान भारतीय सैनिकों की वीरता के सम्मान में आज देशभर में करगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है। बिहार सरकार ने राज्य में पत्रकारों की मासिक पेंशन 6,000 रुपए से बढ़ाकर 15,000 रुपए कर दी है। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच लड़ाई तीसरे दिन भी जारी, मृतकों की संख्या 33 हुई। कोनेरो हम्पी आज फिडे महिला विश्व शतरंज के फाइनल में दिव्या देशमुख से खेलेंगी। इसके साथ ही दोपहर समाचार का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।